भक्ति के द्वारा कृष्ण की संसार में वशीभूत भी होते हैं और वृंदावन में वह भक्त उसी रूप में सेवा प्राप्त होता है। इस प्रेम बंधन के कारण ही उनका नाम दामोदर बन गया, इसके धाम में उतर गया। जब वो गैया चरा के तो उनका नाम गोपाल हो गया, गिरिराज जी को उठाया तो नाम गिरधारी हो गया। जब इंद्र को दमन किया उनका गमन चूर्ण विचूर्ण किया तो उनका नाम हो गया। जब राष्ट्र में राश किया तब राश बिहारी, उनका नाम राश बिहारी हो गया। इस तरह से जब जब उन्होंने यशोदा के गोद में रहने से यशोदा नंदन, नंद बाबा के गोद में रहने से नंदनंदन, इसी तरह से उनके हजारों नाम। कोई कोई उनको काला ही कहते थे, उनकिया काला कहती थी, कृष्ण नहीं कहती, का भ्रंश हो गया ताना और उसका भ्रंश पखलिया हो गया। कुछ भी नाम कृष्ण को बड़े प्रिय है। लीलाओं का स्मरण, लीलाओं का कृष्ण और उनकी लीलाओं के साथ में उन नामों का क्या संबंध है, उसका स्मरण करते हुए वृंदावन में जति रहे और नहीं तो मन से भी रहना था वैष्णव और गुरु के अनुबंध में, यही समस्त देशों का सार है। इस प्रकार से वृंदावन में तरह तरह की लीलाओं से गोकुल के ब्रजवासियों को प्रेम रूपी समुद्र में डुबाते हुए लीलाएं करते रहे। मथुरा में एक फल बेचने वाली फल बेच रहे थे, वो इधर उधर सुनती थी। गोकुल में नंद बाबा को एक लाला हुआ है, बड़ा अलबेला है, बड़ा सुंदर है और नई नई लीलाएं करता है, इधर उधर बड़ा चंचल है। गोपियां उनको दर्शन करने के लिए देखने के लिए आती है, अभी कहती है कि आते तुम बल दे लड़ो, जो लड़े जीतेगा वो लड्डू दे देगी। तो दोनों ताल ठोक कर लड़ने लगते। अच्छा तल कृष्ण तुम यदि कान करेगा तो लड्डू दे। तो कृष्ण एक हाथ यहाँ रख करके और एक कान पर एक प्रकार से आबाद कर दे लियाओं को सुनकर हो गया। मैं भी यशोदा नंदन का नंद बाबा के लाला का दर्शन, ऐसा विचार करके उसने अपनी टोकरी को बड़े बड़े मीठे सुंदर आम अमरूद केले इत्यादि फलों से भर दिया और वो खुले गए और नंद बाबा के फल के चारों तरफ में आवाज लगाने लगी, फल लो फल लो, जिसे कि कृष्ण सुन करके दौड़े हुए आएंगे, उनका दर्शन हो जाएगा। तो कृष्ण आग्रह और पढ़ाने के लिए जल्दी नहीं दर्शन देते। कभी नारद जी को दर्शन दिया एक क्षण के लिए थे, आग्रह बढ़ाने के लिए फिर नहीं। प्रहलाद महाराज जी को भी दर्शन किया क्षण मात्र के लिए, तो एक दिन गई कि किसी प्रकार से कृष्ण का दर्शन, कभी सोते थे मिलते कभी कुछ नहीं दर्शन किया। आज तो ध्यान करके गए, आज तो किसी न किसी प्रकार से दर्शन करके ही लौटूंगी और ये सब विचार कर। कृष्ण लो कृष्ण लो, फल लो गाने लगे, किंतु वो ऐसे आविष्ट हो गई, फल लो छूट गया, गोविंद लो गोपाल लो कृष्ण लो दामोदर लो, और हाथ भी छूट गया। और इस प्रकार से बावली होकर के जब करने लगी तो कृष्ण से रहा नहीं गया, जो सुंदर मैया के गोद थे अभी तो बिल्कुल नंगे ही दौड़ गए। उठ करके उन्होंने गेहूं की राशि पड़ी थी, वहां से एक अंजलि छोटी सी अंजलि, उसमें एक अंजलि गेहूं उठा लिया, और वो भी चलते चलते दरवाजे तक जाते जाते उधर से उधर से सब मिल गया, दो चार यहाँ पर लाने रह गए और बाकी सब वहां जाकर के देखा वो फल भी कह नहीं, दरवाजे पर बैठी है, किधर अंदर बल में नहीं आ सकती क्योंकि नीचे जाती थी, पहले ऐसे विचार था बाहर ही देखे। कृष्ण का अद्भुत रूप लावण्य देख करके मुग्ध हो गई। कृष्ण ने कहा फल दो, और ये करते हुए अपने हाथ में दो चार जो दाने थे उसने टोकरी में छोड़ दिया और फल दो, फल फल विक्रयणी ने कहा ऐसे फल नहीं, हमारे फल बड़े मीठे मीठे सुंदर हैं, तुम हमारी गोद में बैठ जाओ और एक बार मैया कह दो, और फिर अंजलि में भर करके अमरूद आम जो चाहोगे सब दे। फिर सुबह देखा देखी आसपास नहीं है, इधर देखा देखू ही नहीं है, एक सेकंड के अंदर में पहले झट और बैठ करके झट कूद करके मैया एक बार कर दिया और बस फल दो। अब तो वे बेचारी मुक्त हो गई और उनकी अंजलि में कितने फल आए, एक तो आम देने से ही वो फल जाएगा, क्योंकि जितना हो सका फल भी प्रेमी ने उनके हाथों में दे दिया, उनको किस प्रकार से दे करके और उसके तरफ में देख करके उसके मन को चोरी करके, और जो सुधा मैया के यहाँ लौट गए और उनकी अंचल में वो सब फल दे दी। अरे कहाँ से इतना सुंदर फल सब ले आया, और बांटने लगी जितनी गोपियां थी वो कम नहीं पड़ा, जितनी दीदी गई बढ़ता गया, और जिसने देखा उसका सुगंध और मधु, अब तो फल बिक्रे नहीं वहीं पर बैठी की बैठी रह गई, आंख जो खुली थी बंद करके, और वही रूप उसके हृदय में। जब बहुत देर हो गई तो कोई ब्रिजवासी आए आई, अरे क्या कर रही है यहाँ पर बैठ करके, अकेले बैठी हुई क्या कर रही है। जब छोरा टोकरी सिर पर उठाया और चल पड़ी। गोकुल और मथुरा के बीच में यमुना नदी है, जब उसके किनारे पहुंची तो देखी थी मैंने सब फल तो निकाल करके दे दिए थे, क्योंकि ये भारी किस लिए लग रहे थे, मुझे उतार कर देखा उसकी टोकरी रत्नों से भरी थी, जवाहरात हीरे सोने इत्यादि से दम खराब लेकर के आश्चर्य की इतना कहां से आ गया, अब उससे इससे क्या जरूरत। विष्णु कृष्ण का प्रेम हो जाता है संसार का वैभव राज्य स्वर्ग का सुख मुक्ति तो कुछ भी नहीं सुहाता, कोई भी चीज में उसका मन रम नहीं सकता कृष्ण के चरणों के अंदर, इसलिए वो तो उसको तो वैराग्य हो गया, बस टोकरी उठा के बिंदा में फेंक दिया। और कहाँ गई घर नहीं लौटी, घर नहीं के लौटी मतलब क्या, ट्रेन में भी शोर तो करके बस कृष्ण में ही मिल कर एक धाम पे चलू, जबकि कृष्ण ने इतना को जो कि बीज लेकर लेकर के आई थी माटी के लिए से माता का केवल बेस बनाया और उसको हाथी उचित माटी उचित करके दे दी। अभी फल भी कहने को क्या देंगे, जिसके गोदी में बैठ गए मैया कहा और वो मां के रूप में सचमुच मां जैसे व्यवहार किया उसको कृष्ण क्या दे सकते। भाई उसको तो माधुरी जैसी गति और उसकी गोलोक और इसको वृंदावन धाम में यशोदा जी की पड़ोसी के रूप में जन्म किया होगा, जो कृष्ण को सब समय अब आदर के साथ ले खिलाती पिलाती। इस संग्रह की दीक्ष स्वलीला की रान से आनंद के समुद्र में ब्रजवासियों बातें हुए कृष्ण लीला तरह तरह की लीलाएं करते हैं। ब्रजवासी लोग मुक्त हो जाते इस प्रकार से उनकी पालल्याओं में इतना, जबकि आप लोगों को सुनने में और उनके कहने में आनंद होता है तो जो साक्षात रूप से उनको देखती थी उनकी लीलाओं में संलग्न रहती थी उनकी क्या विचित्र। हम लोग अब तो कल ही का दिन बाकी है, इसलिए संक्षेप में हम बता रहे हैं, इसके बाद में मैंने बहुत सी लीलाएं इसमें एक प्रधान हेलकासुर को मारा, बलदेव जी ने मारा, ये गुप्त है। रेणुका मैंने रखा, वो नारियल के पेड़ों की रक्षा करता था बगीचे की और नारियल भेजता था पका हुआ कंस को, और वो उसके परिवार वाले सभी उसकी रक्षा करते थे, जो कोई जाता मार डाल हाथों असुखी तो कभी का धारण। तब सखाओ ने कहा कि हम भी पके हुए नारियल का फल खाएंगे, बलदेव जी उनको और कृष्ण लेकर के गए और गए और उस समय में बलदेव जी ने उस गधे का पिछला पैर पकड़ करके उसके पेट पर बलदेव जी उचित कर गधा मैंने पूछ भगवत तत्व नहीं जानते भगवान का विरोध करते हैं बलदेव प्रभु जी उस अभियंता को। अभी आप लोगों को अभासु को मोक्ष दान और उसको देख करके ब्रह्मा को कुछ लीला देखने की इच्छा हुई उन्होंने, इस प्रकार से लीला को दिखाया। इसके संबंध में महाराज जी
Yeah.
भैया आज क्या मेरा जन्म दिवस है? तुम पूरी पकवान पक्के महन को खीर इत्यादि बना रही हो, क्या बात है? किसने कर दे सदा भैया ने उसको उसको कृष्ण को भगवान को पटका दिया, क्या अभी समय नहीं है? कृष्ण अब क्या करते? अपने पिताजी के गोदी में आकर के बैठ गए। मेरे पिताजी आज भैया तो बड़ी पकवान सब बनवा रही है और तरह तरह की मिठाई बन रही है। आज क्या मेरा जन्म दिवस है? तो बलदेव जी का जन्म दिवस है इसलिए बन रहा। मैंने बाबा ने कहा कि आज इंद्र की पूजा होगी, इसके लिए आज भैया नहीं ब्रज में जितनी भी ब्रजवासी लोग हैं अपने घरों में सैकड़ों बंद पूरी लड्डू सब बनाएंगे, मालपुआ बनाएंगे और इंद्र जी की विशेष पूजा होगी। बाबा क्यों इंद्र की पूजा होगी? क्योंकि कृष्ण छोटे से बालक है। देखो इंद्र की बात करके जब जल बरसाते हैं वर्षा करते हैं तो खासे होती है, उसे पशु चढ़ते हैं, उसे खाते हैं, गैया खाती है, दूध देती है, पानी बरसता है, समस्त प्राणी मात्र उसे पलते हैं, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए क्या करना जरूरी है, इसलिए हमारे पूर्वज लोग करते हैं, इसलिए हम भी करें। कहते बाबा यहाँ पर पूजा नहीं होती, वहां पर वर्षा नहीं होती। तो बाबा बाबा कुछ चक्कर में पड़ गए, वहां भी तो वर्षा होती है। कहते जहां पर नहीं इंद्र की पूजा होती वहां भी तो वर्षा होती है, वहां पर तो सब लोग जीवित रहते हैं। इंद्र की पूजा से इंद्र पानी नहीं बरसाता है, हमारी गिरिराज जी गोवर्धन जी बरसाते हैं, बादलों को रोक देते हैं और बादलों से पानी बरसता है और गिरिराज जी की कृपा से घासें हरी भरी रहती है, फसल उगती है, चावल दाल गेहूं इत्यादि सब होते हैं, सरोवर में पानी स्वच्छ हो जाता है, हम लोग उसको पीते हैं, गैया पूजा की क्या चीज हो? मुझे भी पूजा करनी है तो बर्तन की क्यों मुझे पूजा की जाए? तर्क वितर्क ऐसे किए जैसे नंद बाबा जी पलट गए। अच्छी बात है, तो आज हम लोग इंद्र की पूजा के बदले में ही गोवर्धन की पूजा करें। ऐसा कर करके जो भी परिवार किया ब्रजभर में, ये आज हम लोग इंद्र की परंपरा से पूजा कर रहे हैं। अब तक इसको आज हम गिरिराज जी के तलहटी में जाएंगे, वहीं पर गैयों की पहले पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, गुरु की पूजा करेंगे, फिर गोवर्धन की अन्नकूट लगाएंगे और फिर इसके बाद में गोवर्धन की परिक्रमा। सब लोग गाड़ियों में छकड़ों में भर भर कर वालपुआ खीर इत्यादि लिए पूड़ियों की और कचौड़ियों की मालपुओं की पहाड़ एकदम बन गए। खीर और क्या क्या सब उसे तालाब कर दिए। उस समय में कैसे पूजा हुई और कैसे गिरिराज जी ने गोवर्धन को उस पूजा को ग्रहण किया भी माधव महाराज जी को बन जाएंगे। गिरिराज जी की पूजा कराए इंद्र को अभिमान था कि मैं नहीं जगत का मालिक हूँ, उनके घमंड को दूर कर दूंगा। और कृष्ण अपने बच्चे के रूप में वहाँ पर खड़े रहे और गोपों को दिखलाया कि देखो गोवर्धन वहाँ पर खड़े। एक स्वरूप से कृष्ण ही रहे और दूसरे स्वरूप से
अपने ही गिरिराज जी के ऊपर में गिरिराज बन गए और लोगों से बोले देखो तो गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, इंद्र ने कभी दर्शन नहीं किया, ये गिरिराज जी का दो स्वरूप है। एक है भक्त स्वरूप, यहाँ पर कि कृष्ण सब अपनी लीलाओं को कर रहे हैं, भक्त के कुंजों में भी लीलाएं करते हैं, पहाड़ पर करते हैं, जिससे कि गोपियों को कोई लज्जा नहीं है। वहां पर पर्वत मदन लीला कंदरे कंदरे कंदरावे सब लीलाए, जिसको प्रसन्न ब्रह्मा शंकर इत्यादि के लिए विस्तृत कर, ऐसे कृष्ण वहां पर उसकी गोवर्धन में लीला करते हैं, इसलिए वो भक्त है। गोपियों ने भी इनको हरिदास वर्ग समस्त सेवकों में इनको श्रेष्ठ बतलाया है गिरिराज। और दूसरा स्वरूप है गिरिराज जी की शिला की यहाँ पर पूजा देख रहे हैं, सब जगह जगत में उनकी शिलाओं का पूजन करते हैं, उनको कृष्ण रूप मानते हैं, कृष्ण रूप से इनकी पूजा करते हैं। और राधिका जी उनके साथ में वो जो लाल लाल दाने वाली गुंजा माला उनके पास में रख देते हैं, वो राधा जी का स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु जी को कोई वैष्णव वृंदावन से एक गोवर्धन की शिला गुंजा माला ले गया, महाप्रभु जी कभी तो शिला को अपने सिर पर रखते, कभी आंखों के आंसुओं से नहला देते, कभी भावाविष्ट हो जाते। कुछ दिनों के बाद में इन्होंने रघुनाथ दास जी को वही शिला और गुंजा माला दे दी, बोले कि तुमको अधिक प्रयास नहीं करना है, एक मिट्टी के पात्र में पूजा करते हैं, उसका पानी और तुलसी बस इनको भोग लगाते हैं, भाव सेवा करते हैं। गिरिराज जी को कृष्ण देखना और गुंजा माला को राधिका जी की सिखाने के अनुसार, ये तो एक था। और बहुत से लोग हैं जो गिरिराज जी को कृष्ण का परम प्रिय भक्त मानते हैं और उसी दिन में भक्त मानने से कुछ अधिक लाभ होगा, भगवान माना जाए तो कम होगा। कृष्ण हमको दे सकते हैं, सब कुछ नहीं दे सकते, उनमें एक चीज नहीं है, वो तो भोगता है, भोग करते हैं और गोपियां उनको भोग कराती है, उनकी प्रेमयी सेवा करती है। यदि कृष्ण की सेवा चाहिए तो गोपियां दे सकती है, राधा जी दे सकती है, कृष्ण इसको नहीं दे सकते, कृष्ण और सब कुछ दे सकते, अपनी प्रेमयी सेवा नहीं दे सकते। गिरिराज जी से प्रार्थना करने कैसे, ये कृष्ण की प्रेम भरी सेवा गोपियों का भाव दे सकते हैं, कृष्ण क्या पाई बहुत। इस प्रकार नंद बाबा कृष्ण की वर्णन से लीक सभी लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि कितने कितने भारी भारी विपत्तियां आई, उसमें उन विपत्तियों में नारायण ने हमारे बालक की रक्षा की, कृष्ण की रक्षा की, और उन विपत्तियों से हम बचे। परंतु गर्गाचार्य ने कहा था नारायण समुद्र में गुणों में नारायण के दर्शन, और इससे ही समस्त विपत्तियों से मुक्त होगा। ब्रज में जितनी जितनी विपत्ति आई ये सब सारे विपत्तियों से हम बचे और हम सब की रक्षा। परंतु आज उनके इस विरह रूपी विपत्ति से हम कैसे निकले, इस विरह समुद्र से निकलने का कोई उपाय,
इस प्रकार रात भर कृष्ण की बातें करती थी, उद्धव को सुनाने लगी। सारी रात बीती। उद्धव जी प्रातःकाल नंद बाबा जसोदा माँ को प्रणाम करते हुए अंततः कुछ भी तो बोल नहीं सके, केवल सुनते ही रहे। प्रणाम करके बाहर निकले, कृष्ण कुंड में जाके स्नान किया, गायत्री जप करते हुए अब रात लेकर के रात में बैठ कर चले। कृष्ण ने कहा था गोपियों के पास जाने, इसलिए उस क्यारी वन में पहुंचे जहां गोपियां। जैसे ही रात लेकर के पहुंचे, कुछ गोपियां वहां सामने आई, बोले कि अरे ये कौन आया, फिर से वही सोने का रात, लगता है वही काल क्रूर अक्रूर जो ब्रजभूमि को अंधेरे में डालकर चला, तो वही आया है और किस लिए आया। निश्चित रूप में जान पड़ता है गोपियों के हित पिंड को लेने के लिए आया। कंस के आने के पश्चात मथुरापुरी में पिंड देने के लिए कुछ नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ आया है गोपियों का हित पिंड लेने। ऐसे ताना बाना किए उद्धव जी चमत्कृत हो गए। ऐसी प्रेम की परिपाटी, ऐसा शब्द, ऐसी भाषा कभी तो सुना ही नहीं। और गोपियां सामने आ, निश्चित रूप में ये कृष्ण का कोई संदेश वाह, तब उसे कहने लगे यहां तुम कैसे आए, ये रास्ता नहीं है, रास्ता घूम करके आ गया, तुम्हें कृष्ण के पिता माता के पास में जाना चाहिए, उनको सांत्वना दो, तुम्हें देख करके वे प्रसन्न होंगे, यहां तो उनका कोई भी संबंध संपर्क नहीं रहा, उन्हें धन्यवाद है जिन्होंने क्षण भर में ही सारा संपर्क संबंध तोड़ लिया है। कि मुने कपि सुदुस्तज, ऋषि मुनियों के लिए भी जो दुस्तज है जो भूल नहीं सकते, परंतु उस कृष्ण को धन्यवाद जो कि हम सबको भूल गए, हमें छोड़ दिया। संसार में प्रेम होता है परंतु कोई मतलब लेकर, स्वार्थ लेकर के प्रेम होता है। इसलिए कोई स्वार्थी, जैसे कि जिसके पास धन हो उसे देखते हुए सभी लोग उसके मित्र बन जाते, जब तक रूप यौवन हो तब तक पति पत्नी का बड़ा संबंध है, जब कोई बीमार पड़ जाए, शरीर से विकृत हो जाए और कोई संबंध हो, बार बनीता भी जब तक पुरुष से पैसा मिलता है तब तक उसकी सेवा है, फूलों में भाव में बैठती, एक बार मधुपान करने के पश्चात दोबारा कभी लौट के नहीं आता, जंगल में हिरण रहता है पर आग लगने पर फिर कभी लौट के नहीं आएगा, वृक्ष में पक्षी बैठते हैं जब तक फल फूल है, नहीं तो फूल नहीं आएगा। तो ऐसे ही स्थिति है संसार में स्वार्थ का प्रेम, परंतु हम लोगों ने बचपन से कृष्ण से संबंध जोड़े थे, कृष्ण से प्रति व्यवहार, उसमें तो कोई लेन देन नहीं, कभी हमने कोई कपड़ा या रोटी हमने तो कुछ मांगा नहीं, कृष्ण से हमने कभी कुछ मांगा नहीं न कुछ लिया, जो कुछ बना खुदा सर्वस्व दे करके उनकी सेवा। परंतु आज हमारा कौन सा ऐसा दोष जो कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, हे उद्धव तुम कैसे थे, हमारी क्या कमी देखी उन्होंने जब उन्होंने हमें छोड़ दिया। ऐसा कहती हुई गोपियां उस समय बड़े जोर जोर से रोने लगते, विकल होकर रोती हुई कृष्ण की कोई शोक और बाल की लीलाओं का गान करने लगी और रोती लगी। इस प्रकार कुछ देर तक रोती हुई कहती अपने को धैर्य बनाती हुई बोली कि चलो एक बार राधा जी की दशा तो देखा, एक बार देख के लो जैसे तुम आए हो, देख के राधा जी के पास मिले जहाँ फूलों के सेठ में सुना और लेटी हुई है फूलों के समान, उनका शरीर छीण बन करके बराबर फूल गोपियां रुई लगा कर श्वास देखती है कि श्वास चल रहा है या नहीं। कभी घंटे आधा घंटे में कोई एक शब्द बोल, इस प्रकार रुई चले उड़ने लगे कुछ चले तो पता चले कि हाँ श्वास चल रहा है, कभी कभी पल्स भी नहीं मिल पाता। तो ये स्थिति दिव्य उन्माद की स्थिति में पड़ी हुई कृष्ण के विरह में उन्माद जो कि रूढ़ अधिरूढ़ और उससे ऊपर दिव्य उन्माद जो अंतर दशा में खोई हुई थी, ऐसी दशा में कोई एक काला भ्रमर आ करके राधा जी के चरणों में बैठने को जाता है और उसके गुण गुण ध्वनि को सुनकर राधा जी अंतर मन में सोचती है कि कोई काला भ्रमर आया और उसी के साथ बात करने लगी। तब उस दिव्य उन्माद में जो प्रलापमय वचन कहती है, जो दूसरों के और भाषा से अति ऊपर है, जो बोधगम्य नहीं हो सकता, फिर भी भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, जब राधा जी के विरह विलाप को मधुपकितम बंद माँ प्रसाद ने सपतना कुछ विनीत माला तुम तुम सस्वीर न बहतु मधुपति मानिनी नाम तत् प्रसाद यदु सरसि विडम्बम यस्य दूतस्तमित्री। अरे मधु भ्रमर तुम क्यों आया, लगता है कृष्ण का संदेश बाहर दूत बन करके आया, जैसे राजा वैसे राजदूत, तो यहां ऐसे मनाने के लिए मुझे मनाने के लिए आया क्या, एक माननी को ऐसे ही मनाया जाता है, तुम्हें तनिक भी सुध बुध नहीं है, कोई ज्ञान विद्या बुद्धि नहीं है, क्यों तुम्हारा छह पैर मनुष्यों का दो पैर होता तो बुद्धिमान है, पशुओं का चार पैर होता है इसलिए उसे जानवर कहा जाता है, पशु कहा जाता है, अब तुम्हारा छह पैर है जो कि तुम उस जानवरों से पशुओं से गया बिता, बुद्धि तो है नहीं, कैसे आना चाहिए, तो आया तो इस गोफों में मूंछ में ये कुमकुम लगा के क्यों आया, ये लाल वर्ण को लाल रंग लगा करके क्यों आया, कुमकुम लगा ऐसे ही बनाया जाता, भद्रवेश बना के आता, तो तुम्हारे प्रभु की जैसी जद सभा में हंसी होती है वैसे आज तुम्हारी स्थिति, तुम्हें देख करके पता लगता है तुम्हारे प्रभु भी कैसे, तो यहाँ बार बार तुम क्यों हमें मना रहे, क्यों उनकी बातें कहती कहते हो, उनकी बातें हमने बहुत सुनी, ये सारी पुरानी हो गई है, भन्नताम अन्न वार्ता, और कोई नई बात हो तो कुछ बता, वो भी नहीं वही पुरानी बात है, ये तो हमने सुन सुन करके कान भर लिया, हम ब्रज नारी ब्रज गोपी, हम भोरी भारी लक्ष्मी नहीं जो सीधी सादी भरी भारी है, बार बार थकती है रोती है फिर भी कृष्ण के पास में जाया करती, परंतु हम तो थक चुकी है, अब हम जाएंगे नहीं और ना ही मानेंगी, तुम वहां पर जाओ मथुरा में, वहां जाकर के मथुरा की जो नागरिया है उनके पास में कृष्ण की बात सुनाया करना, वे तुम्हें बहुत पुरस्कार दिया करेंगे, तुम्हारे प्रभु जी की ये करतूत है जिन्होंने आज हमें ऐसे बनाया। कहां राज दुलारी थी, घर में राजमहल में रहा करती थी, आज तुम्हारे प्रभु ने हमें घर से निकाल के वन की भिखारिणी बना दी। आज अपने पास में मुट्ठी भर चना भी नहीं और कुछ देने लायक कोई भी चीज नहीं जो हम तुम्हें देंगे, इसलिए तुम वहां जाओ, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार विकल होकर के राधा जी अपने अंतर्भाव में डूबी हुई कहने लगी, फिर बार बार ऐसी कहती जा रही थी, मृगयूर इव कपिंद्रम बिंबदे लुप्त धर्मा स्त्रियाम अकृत विरूपाम स्त्रीजीत काम जा। हे मधु, उनकी बात और क्या सुनाओगे, मत सुनाओ, एक जन्म की बात नहीं, ये जन्म जन्म की बात है। हमारे श्याम सुंदर का तो कोई दोष नहीं, दोष है तो उस काले का दोष है, श्याम वर्ण का दोष है कि जन्म जन्म के ठग बन करके आए। जब राम अवतार में आए नव दुर्वादल श्याम बनकर, उस समय वन में गए, सुग्रीव से मित्रता कर ली और उसके कहने से पेड़ के आड़ में से छिप कर बानर राज बाली को मार दिया। क्या कोई बानर तो मारता है, बंदर को कोई नहीं मारता, फिर भी आड़े छिप कर उसे मारता, ये क्षत्रिय स्वभाव के कारण किया। और जब वन में गए तो अकेले जाना चाहिए, एक पत्नी को हाथ हाथ पकड़ करके ले जाने की क्या आवश्यकता, शूर्पणखा सुंदरी वेश बना करके उनके सामने आई, उसे यदि ग्रहण नहीं करना था तो नहीं करते, मना कर देते, परंतु बार बार उसे छलते हुए लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया, तो जिससे कि और कोई ग्रहण नहीं कर सके। क्या ऐसे करना चाहिए, परंतु श्री राम ने तो उसे अपना लिया, शूर्पणखा अंतर हृदय से अपना और बाहर से नाक कान काट करके राक्षसी को विरूप कर दिया। इधर राधा जी कहती है कि इस प्रकार राम अवतार में किया, उसके बाद दूसरे अवतार में भी देखा जाए, जबकि सरल सीधे साधे ब्राह्मण होकर के आए बावन अवतार में, बलि महाराज जी के दरबार में गए, उनको बहुत वचनों के द्वारा छल लिया, मोहित कर दिया, बोले हम निर्लोभी ब्राह्मण हैं, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके राज्य में हम बैठकर तपस्या कर सके,